प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, लेक्चर नंबर 624. ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहुणं. सुर असुर नरपति वंद्यने प्रविनष्ट घाति कर्मने प्रणमन करूहु धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वरिशेष तीर्थंकर ने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर्य चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदु वळी हूँ मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौ सिद्धने य नमस्करण करिये रीते गणधरने अध्यापको ने सर्वसाधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करू साम्यने ये नाथि शिव प्राप्ति बने. आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है. उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेन आचार्य ने तात्पर्य उत्ति टीका की रचना की है. इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं. उसमें से ये सातवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 121 पर हम आ गए. 121 नया पैराग्राफ है ना, वहाँ से शुरू करने वाले. क्या कहते हैं, लिंग वटले वड़े वड़े ने द्वारा एटले के अमेहनाकार वड़े जेनु ग्रहण एटले के लोक में व्यापवापणू नथी. आ हा हा, मेहनाकार में नथी. पहला बताया था ना इंद्रिय का जो लिंग का जो आकार है उसको मेहन कहा था, मेहनाकार. अब यहाँ अमेहनाकार की बात हो रही है, बताएंगे अभी. अमेहनाकार में नहीं तो अमेहनाकार एटले लोक में व्यापक चेम छे छे. लिंग वड़े एटले के अमेहनाकार वड़े जेनु ग्रहण एटले के लोक में व्यापवापणू नहीं. आहा हा, एक क्रिया भले करी शके नहीं पण लोक व्यापक आत्मा थई शके के नहीं. असंख्य प्रदेशी छे, केवड़ी समुद्घात करे त्यारे लोक व्यापक थाय छे. समझाय छे काई? वेदांतनी सामे दृष्टि छे. अमेहनाकार वड़े एटले लौकिक साधननू इंद्रियना काम विना जेनु ग्रहण एटले के लोकमां व्यापवापणू नथी. लोकमां व्यापे आत्मा लोकव्यापक थाय ए नथी. ए तो शरीरात्मक छे ते तेटलो छे. लोकमां व्यापवापणू नथी ते अलिंग ग्रहण छे. अभी 14वें में और 15वें में क्या डिफरेंस है वो बता रहे. पहला मां 14वां बोल मां मेहनाकार हतुं ने एनाथी विरुद्ध अमेहनाकार लीधु. एम के भले लौकिक साधन न करे पण आम व्यापक तो थई शके ने. करी भले न शके पण व्यापक थईने आखा लोक प्रमाणे प्रसरी जाय के नहीं. લોક પ્રમાણે પ્રસરવાની વ્યાપવાની એની તાકાત છે કે નહીં, તો કહે છે ના. એને કોઈ એસે સમજે ને પૂરા લોક પ્રમાણે એસા નહીં હૈ. આ કેવલી સમુદાય મેં હોતે હૈ ઉસકી બાત યહાં નહીં લેની હૈ. લિંગ વડે એટલે કે અમહેનાકાર વડે, જેનું ગ્રહણ એટલે કે લોકમાં વ્યાપવાપણું નથી. યહાં ગ્રહણ શબ્દ કા અર્થ ક્યા ક્યા, લોક મેં વ્યાપકપણા હોના ઉસકો કહેંગે ગ્રહણ, વો ઉનકે દ્વારા નહીં હોતા હૈ. એટલે વ્યાપમાપણાના લિંગ રહિત છે એ તો પોતાના શરીર પ્રમાણે રહેનાર છે. મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશમાં ઘણું સ્પષ્ટ કર્યું છે. ચોથા અધિકારમાં મિથ્યા દર્શનની વ્યાખ્યા લીધી છે, એમાં બહુ ચોખ્ખું કર્યું છે. ત્યાં તો ત્યાં સુધી લીધું છે કે એનું શાસ્ત્રનું જ્ઞાન થયું હોય પણ જો એમાં માનનું પ્રયોજન હોય તો તે જ્ઞાન યથાર્થ નથી. ધારણામાં જ્ઞાન આવ્યું એ જ્ઞાન વાસ્તવિક નથી. ક્યાં કહેતે શાસ્ત્ર કા હી જ્ઞાન, ધારણા જ્ઞાનીને ઉસને બરોબર યાદ મેં રખા તો કહેતી ઉસકો જ્ઞાન તબ તક નહીં કહેંગે જબ તક આત્મજ્ઞાન નહીં હોતા. સ્વરૂપ સન્મુખ થઈને જ્ઞાન થયું નથી અને લક્ષ્યમાં સાંભળી સાંભળીને પોતાની યોગ્યતાથી થયું છે એવું ધારણા જ્ઞાન એ જ્ઞાન જ નથી. ક્યાં કહેતે શાસ્ત્ર સે સુના બરાબર યાદ રખા હમને બારંબાર ઉસકો રટન ક્યા ઉસકા સીખા ઔરંકો સિખાયા ઓર ક્યા ક્યા પરીક્ષા દી તો ધારણા જ્ઞાન મેં તો બરાબર પક્કા હુઆ, તો કહેતે વો જ્ઞાન હી નહીં કહા ઉસકો. ક્યો નહીં જ્ઞાન કહા, પરલક્ષી હે ને. ધારણામાં જે જ્ઞાન આવ્યું એ મને જ્ઞાન થયું એવું જે અભિમાન તે મિથ્યા દર્શન છે. ક્યુંકિ જબ તક મિથ્યા તો ચલ રહા હૈ તબ તક કહીં ના કહીં પર્યાય બુદ્ધિ તો હૈ હી ને, અભી તક ઉસમે તો અહમપના તો હોગા હી હોગા. નહીં સમજે, જૈસે કોઈ વ્રતાદિ કરતા હૈ મિથ્યા દૃષ્ટિ તો ઉસમે ઉસકા અહમપના હો જાતા હૈ, મેં તો ઇતના તો કરતા હું. અબ એસા ક્યા હુઆ યે સ્વાધ્યાય કે બારે મેં, ઉસને યાદ કિયા તો મુજે ઇતના જ્ઞાન હુઆ, એને એક શોભસમ જ્ઞાન કી જો પર્યાય હૈ ઉસમે અહમ બુદ્ધિ ઉસમે અભિમાન હો ગયા ઉસકો. યે કહે રહે યહાં પર કે ધારણામાં જે જ્ઞાન આવ્યું એ મને જ્ઞાન થયું એવું જે અભિમાન તે મિથ્યા દર્શન છે. સમજાય છે કાંઈ, એ મારગડા જુદા પ્રભુ. હા હા, આ રીતે આત્મા પાખંડીઓને પ્રસિદ્ધ, એ પાખંડી જિસકો માનતે હૈ, પાખંડીઓ પ્રસિદ્ધ હૈ ઉસકા અર્થ ક્યા, વો જિસ રૂપ મેં આત્મા કો માનતે હૈ. વેદાંત એમ કહે છે ને કે આત્મા સર્વવ્યાપક છે, અહીંયા કહે છે કે એ પાખંડીઓ છે. શ્રીમદે એને નિશ્ચયાભાસી કહ્યા છે, જેને પર્યાય માની નથી અને એકલું દ્રવ્ય જ વ્યાપક માન્યું છે એ નિશ્ચયાભાસી મિથ્યા દૃષ્ટિ છે. ઉસને તો દ્રવ્ય હરો પૂરે લોક મેં વ્યાપને વાલા એસા ઉસને માન લિયા. કેટલાકને આ નિશ્ચયની વાત સાંભળીને એવું લાગે કે આ વેદાંત કહે છે તેવી આ વાત છે, પરંતુ એમ નથી. વેદાંતિ ક્યાં માનતે હૈ, પર્યાય હૈ નહીં હૈ ઓર દ્રવ્ય કો શુદ્ધ શુદ્ધ કહેતે હૈ. ઓર યહાં પર અબ શુદ્ધ ને એસે આત્મા કો હમને ભી એસા કહા, હમારે આચાર્યોને એસા કહા, કિસ અપેક્ષા સે શુદ્ધ ને એસે, પરંતુ પર્યાય કા સ્વીકાર હૈ. નય તો તભી સાચે કહેલાતે હૈ જબ અન્ય નયોં કા ભી સ્વીકાર હોતા હૈ. વો તો નિરપેક્ષ નહીં હોતે, નિરપેક્ષ નહીં મિથ્યા હોતે, સાપેક્ષ હોતે, ક્યુંકિ ઉસકી પરિભાષા ક્યા હૈ નયોં કી, નય ચક્ર ટ્રાન્સલેટ. પહેલે કંડિશન હે પ્રમાણ સે જાને હુએ, પ્રમાણ સે જાને ઉસને દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સબકો જાના યથાર્થ સે. જાનને કે બાદ ઉસકે એક અંશ કો પૂરે દ્રવ્ય કો ઉસ એક અંશ રૂપ સે વો દેખ રહા હૈ, દ્રવ્ય ઉસ રૂપ સે દેખ રહા હૈ, યાની પૂરા દ્રવ્ય ઉસ એક ગુણ રૂપ સે એક પર્યાય રૂપ સે દેખ રહા હૈ. ઉસકો ક્યા કહેંગે, નય કહેંગે. પરંતુ વહાં સ્વીકાર હૈ, પહેલે પ્રમાણ સે જાના હૈ ને, તો અન્ય સભી જો એંગલ્સ હે અન્ય નયોં કા ઉસકા સ્વીકાર હૈ ઉસકો. યહી કહે રે, દેખો ક્યા કહેતે. કેટલાકને આ નિશ્ચયની વાત સાંભળીને એવું લાગે, એને જો સમય સારાદી મેં જો દૃષ્ટિ કી બાત હૈ, દૃષ્ટિ પ્રધાન કથન હૈ, નિશ્ચય કી બાત હૈ, તો વો બાત સુનકર લગતા રે હમારે મેં ભી એસા કહા, યે વેદાંત મેં ભી એસા કહેતે, આપ ભી એસા કહેતે, એસા લગતા હૈ ઉનકો. તો ત્યાં વેદાંત કહે છે તેવી આ વાત છે, પરંતુ એમ નથી. વો સર્વથા માન રહે ઓર યહાં કિસી એક નય કી અપેક્ષા સે બતા રહે. સંપ્રદાયમાં તો લૌકિક ક્રિયા માત્રની વાતું છે અને અહીં નિશ્ચયની વાત આવે કે આત્મા રાગનો કરતા નહીં, જડનો કરતા નહીં, તો કંઈ આ તો વેદાંત થઈ ગયું. ક્યાં કહેતે હૈ સંપ્રદાયને એની વાત સ્થાનિક વાસીમાં યા અન્યત્ર ભી ક્યાં દેખતે હૈ, ક્રિયા કો બતાતે હૈ. શુભ પરિણામ તો અલગ બાત હૈ ઓર વો ક્રિયા બાત અલગ હૈ ઓર ક્રિયા સે હી ધર્મ માનતે હૈ. ઓર યહાં જો હમ દ્રવ્યાનિયોગ કી બાત કરતે હૈ, જ્ઞાન કી ઓર શ્રદ્ધાન કી બાત કરતે હૈ, તો ઉનકો લગતા હૈ કે નિશ્ચય વાલે હૈ, નિશ્ચય 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 હૈ. હા અભી અભી યાદ આ ગઈ ને, ધારણા મેં પડા તા અભી ઉપયોગ મેં લિયા. એની ક્યાં નિશ્ચય કી વાત આતી હૈ, આત્મા રાગ કા કરતા નહીં હૈ. એને ઉસકે વિકલ્પ નહીં રહેતે, જ્ઞાન તો રહે જાતા હૈ, જ્ઞાન હૈ પરંતુ ઉસ વિકલ્પ નહીં અભી. હા દેખો ક્યા કહેતે, જબ નિશ્ચય કી વાત આતી હૈ, કૈસે રાગ કા કરતા આત્મા નહીં હૈ, જડ કા કરતા નહીં હૈ, તો ક્યા સોચતે લોગ, યે વેદાંત જૈસા હો ગયા. અરે વેદાંત નહીં, વેદાંત તો પાખંડ છે, આખરી વાત ભાઈ છે. આત્મા પાખંડીઓને પ્રસિદ્ધ, અરે રે ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાથ અંતરમાં શરીર પ્રમાણે છે, એને વ્યાપકપણે માનવો એ પાખંડ છે. ક્યાં કહેતે, અભી કહાં હૈ, શરીર પ્રમાણે સમુદ્ઘાત મેં પરદેશ બહાર નિકલતે ઉસકી બાત છોડ દો, તો આત્મા દેહ પ્રમાણે ઓર યે ક્યા માનતે હૈ, પૂરે લોક પ્રમાણે વિશ્વમાં વ્યાપક હૈ એસા માન. હા મુસલમાન પણ, મુસલમાનમાં પણ એ ચાલે છે, અનહલ હપ હું ખુદા છું. સૂફી ફકીર થયા છે, સૂફી ફકીરને બોટાદમાં સંવત 1980 સાલમાં મેં જોયા છે. હું બહાર નીકળતો હતો ત્યાં ઊભા હતા, મને આવતો જોઈને એક કોર ઊભા રહી ગયા. પણ વૈરાગ્ય પણ ખરો, પણ તત્વની ખબર નહીં. એમ કહે કે હું ખુદા, હમ હૈ ખુદ ખુદા, યારો હમ ખુદા હૈ, હમ પરમેશ્વર ભગવાન હૈ, એ વ્યાપક તરીકે કહેતો હતો, એ જૂઠી વાત છે. આહા હા, ભગવાન તો શરીર પ્રમાણે જ છે, જો લગાય ને શરીર પ્રમાણ હિ હૈ. કેવલી સમુદ્ઘાત થાય છતાં એ તો અમુક બે ત્રણ સમય વ્યાપક રહે. કોણ સે બે ત્રણ સમય? વો કપાટ મેં ઇતના ફેલતા નહીં ને, પ્રતર લોકપૂરણ ઓર પ્રતર, એવું તો લોક વ્યાપક. પ્રતર મેં તો વાત વાલે છોડ કર, કોણ સી વાત વાલે, બાજુ વાલે, અંદર વાલે ને, પૂરે લોક મેં વ્યાપક હૈ, એક્સેપ્ટ સાઈડ કે સબસે અંત મેં જો વાત વાલે હૈ ઉનકો છોડ કર, સર્વત્ર વ્યાપક હૈ. ઓર લોકપૂરણ મેં વો વાત વાલે સહિત સર્વત્ર વ્યાપક હૈ. યા કે ને, કેવલી સમુદ્ઘાત થાય છતાં એ તો અમુક બે ત્રણ સમય વ્યાપક રહે, સમજાનું કાંઈ. પણ જીવને વ્યાપક માનવું, બધાના કામ કરે એમ માનવું, કારણ કે એ પણ હું છું, એ પણ હું છું, એ પણ હું છું. ક્યાં કહેતે, એ સબ મેરે અંશ હૈ, ઈશ્વર કે સબ અંશ હૈ, યહ ભી મેં હું, યહ ભી મેં હું, એસા માનતે. માટે બધા કાર્ય મારા છે, અહીં એમ કેવું છે, એ હું છું મારા છે. હા, મારો આત્મા ત્યાં પણ વ્યાપક છે ને. પેજ નંબર 122 એમાં લાસ્ટ પેરેગ્રાફ અભી પઢને જા રહે, એને એવું ક્યાં માનતે, મેરા એ આત્મા વહાં પર ભી વ્યાપક હૈ, વો સર્વત્ર વ્યાપક હૈ, સભી જીવો મેં વ્યાપ્ત હૈ, એસા કહે રહે. આ રીતે આત્મા પાખંડીઓને પ્રસિદ્ધ, ભાષા જો વિતરાગી મુનિઓની ભાષા છે, એ અનાદરની ભાષા નથી, પણ વિપરીતને વિપરીત રીતે જણાવવા માટે ભાષા છે. એને કિસી કા દ્વેષ નહીં કર રહે, ઉનકો દુઃખ લગે એસી ઉનકી કોઈ ભાવના નહીં હૈ, પણ જો ઝૂઠ હૈ ઉસકો ઝૂઠ તરીકે સે બતા રહે. વેદાંતનું ઘણું છે ને, આત્મા એક જ છે, વળી દ્રવ્ય અને ગુણને પર્યાયને આ શું, એ તો ત્યાં સુધી કહે છે કે આત્મા અને આત્માનો અનુભવ બે ક્યાંથી આવ્યું, અદ્વૈત છે ત્યાં બે ક્યાંથી આવ્યું એમ કહે છે. અલિંગ ગ્રહણમાંથી આટલું કાઢ્યું, એને અલિંગ ગ્રહણ મેં સે ઉપ ઉસકા નિરાકરણ ક્યાં, उनका खंडन किया उस मत का। पाखंडियों ने प्रसिद्ध शूं साधन रूप आकार वालों, पाखंडियों ने प्रसिद्ध साधन रूप आकार वालों लोक व्याप्ति वालों नहीं। इन्हें उन्होंने कौन सा आकार माना, लोक में व्यापक ऐसा आकार माना, तो ऐसा है नहीं है। लोक व्याप्ति वालों नहीं, लोक में व्यापी जाए एवो भगवान आत्मा छे नहीं। आहाहा, मोक्ष थाय केवल ज्ञान थाय तो पण शरीर प्रमाणे रहीने केवल ज्ञान थाय छे, क्या कहते हैं? तो केवल ज्ञान होने पर सर्वत्र व्याप्ता है कि नहीं व्याप्ता, क्योंकि बात बताए ना प्रवचन सार में आइए, ज्ञान कितना है तो गेय प्रमाण है, गेय कितना है तो लोकालोक है, इसलिए ज्ञान भी लोकालोक प्रमाण है। सर्वगत कहा उसको, सर्वत्र व्यापने वाला ऐसा है, क्षेत्र अपेक्षा नहीं है, भाव अपेक्षा है। ए पण शरीर ने कारणे ते प्रमाणे रहे चे एम नहीं, क्या कहते हैं? केवल ज्ञान हुआ, अभी जीव के जो प्रदेश है वहीं पर शरीर की भी रचना हुई है, तो देह प्रमाण हम कहेंगे उसको। पण देह के कारण देह प्रमाण है क्या? तो नहीं, अपने कारण। तो कहते शरीर ने कारणे ते प्रमाणे रहे चे एम नहीं, पोताना आकारे पोताने एटलो आकार थाय छे। आहा हा, अलोकनो आकार लीधो छे ने, आकाशनो आकार, आकाश 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 अंत नहीं, ज्ञाय अंत नहीं, तो पण एने व्यंजन पर्याय छे, एनी आकृति छे, क्या कहते हैं? व्यंजन पर्याय किसको कहेंगे? हाँ, प्रदेश तो गुण के कारण जो आकार होता है उसके निमित्त से, उसको द्रव्य का जो आकार है उसको कहेंगे व्यंजन पर्याय। तो हमारी आपकी स्वभाव व्यंजन पर्याय के विभाव है। हाँ, स्वभाव कब होगी? सिद्ध दशा में। परमाणु में क्या होता है? पुद्गल में परमाणु का आकार वो स्वभाव व्यंजन पर्याय, और स्कंद जो बनता है तो विभाव व्यंजन पर्याय। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? इन्हें व्यंजन पर्याय छे, किसको? आकाश की बात चल रही है, आकाश भी द्रव्य है, तो उसका भी व्यंजन पर्याय उसके भी होगी, उसका भी अपना आकार होगा। एनी आकृति छे, एक परमाणु छे एने आकार छे, पण एक नानामां नानो परमाणु छे एना छ भाग छे, छ पासा छे, एक अंशथी एक परनी साथे संबंध राखे छे, आखो नहीं, एवी वात छे। आहा हा, एने ठेकाणे आ कहे छे कि आत्मा आखा लोकमां व्यापे छे। आत्मा तो परना संबंधमां एक समय ने पर्याय ना संबंध थी संबंध छे, क्या कहते? छ भाग छे ने, देखो पासे जैसे, हाँ क्यूबिकल जिसको षटकोण है, ऐसे कोण, ऐसे कोण नहीं है, क्योंकि देखो क्यूबिकल हो गए तो उसके तो आठ कोण हो जाएंगे, परंतु उसको षटकोण क्यों कहते हैं? क्योंकि छह बाजू थी उसको हम देख सकते हैं ना, कोई भी चीज़ है तो हम इधर से भी देख सकते, इधर से ऊपर से नीचे से, चार दिशा और ऊपर नीचे, ये छह, तो छह दिशा से, ये पंचाध्याय में बात आई थी, हम षटकोण कहेंगे तो उसके पार्ट हो गए, ये बात पंचाध्याय में पढ़ी थी हमने। वो तो षटकोण अगर ऐसा लिखेंगे हम, वैसे तो तीन डायमेंशन होगे ना उसके, तो छह बाजू से हम उसको देख सकते हैं, इसलिए उसको षटकोण, वो तो दिखाने के लिए दिखा है। हाँ, षटकोण कहेंगे तो फ्लैट हो जाएगा, उसको तो क्यूबिकल है ना, तो और अनेक आकार हो जाएंगे उसके, अभी मिलेगा नहीं, नहीं तो मैं तो पंचाध्याय में से बताती आपको, अच्छा लिखा है उसके, अपना हुआ था यहाँ पर पहले में। दक्षा बहन आपके जरा पीछे का कपाट खोलना, राइट साइड, और वहाँ बीच में राइट साइड में एकदम एक पंचाध्याय नाम की जरा खोलेंगे तो, अरे वाह, हाँ बहुत अच्छा। हाँ सिद्धों का उनके आकार होगा कि नहीं? सिद्धों के, हाँ नहीं, उनके शरीर है ना अभी, और संस्थान नाम कर्म है, कर्म का निमित्त भी है वहाँ पर, और तब तक उनको विभाव व्यंजन पर्याय कहेंगे। यहाँ अशुद्ध कहेंगे उसको। हाँ हाँ प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार है ना, मैं निकाल के रखूंगी अभी बाहर, है ना। बैठता नहीं है क्योंकि आकार यानी कोई लिमिट करेंगे हम उसको, तो उसके पार कुछ चीज़ होनी चाहिए, ऐसी बात आई है ना। जैसे इस वस्तु का आकार है क्योंकि इसके बाजू में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल आकाश है, हम कहीं समझना ऐसा है कि भगवान ने अनंत ऐसा ही उसको जाए, वो अनंत रूप से ही है, थ्री डायमेंशनल है, अनंत रूप से थ्री डायमेंशन है ना। जैसे लोकाकाश को भी तीन डायमेंशन है कि नहीं है, वैसे पूरे आकाश को होगा कि नहीं तीन डायमेंशन, कितना है तो अनंत है, अनंत प्रदेशी, उसके पार क्या है कुछ नहीं, आकाश ही आकाश है, परंतु उसका अपना आकार होगा। हाँ कैसा होगा, जैसे भगवान ने तीन डायमेंशन ऐसा होगा। हाँ कौन पांच? उनका तो स्वभाव ही पर्याय है क्योंकि उनको तो कोई विभाव होते ही नहीं है, ना आकार में होते हैं ना अन्य किसी में होते हैं। उनके अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय सब स्वभाव पर्याय अनादि से। देखो हम यहाँ देख रहे थे 123 पेज पर नया पैराग्राफ, अलोक नो आकार लीधो छे ने, आकाश नो आकार, आकाश आकाश अंत नहीं, क्या है अंत नहीं, तो पण एने व्यंजन पर्याय छे, एनी आकृति छे, कि उदेशत्व गुण है जो सामान्य गुण है, तो उसके भी अपना आकार होगा। एक परमाणु छे एने आकार छे, पण एक नानामां नानो परमाणु छे एना छ भाग छे, छ पासा छे, एने छ एंगल छ बाजूथी हम उसको देख सकते इस तरह से, परंतु उसका कोई भेद नहीं होगा। एक अंशथी एक परनी साथ संबंध रखे छे, आँखों नहीं, यानी उसका पर के साथ जो संबंध आता है तो एक साइड से कुछ आएगा इस तरह, ये भी बात है। हाँ हाँ इन्हें ठिकाने आ कहे कि आत्मा आखा लोक में व्यापे छे, आत्मा तो परना संबंध में एक समय ने पर्यायना संबंध थी संबंध छे। जब हम कहें आत्मा का संबंध है तो कितना है, तो कहते एक समय पूर्ता है, वो भी कहने के लिए प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में विराजमान है, यानी किसी पर के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी हम कोई ना कोई संबंध, एक क्षेत्रावगा संबंध, निमित्त निमित्त संबंध, कुछ ना कुछ उसको लगाते हैं, तो कहते वो तो समझने जैसी बात है। आ तो प्रवचन सार भगवान ने त्रिलोकनाथ ना प्रवचन, प्र एटले विशेष है, वचन एटले दिव्य ध्वनि, प्र शब्द लगाते ना जैसे शांत और प्रशांत, मोद और प्रमोद, विशेष और अधिकता बताने के लिए पर शब्द लगाते हैं, तो पर एटले विशेष है, वचन एटले दिव्य ध्वनि, भगवान त्रण लोकना नाथ परमात्मा सिमंदर भगवान ने दिव्य ध्वनि सांभळीने आव्या त्यारे आ लखाण लख्यू छे। किसकी बात है? कुनकुंदाचार्य की। कुनकुंदाचार्य देव महाविदेह में गया था, पेलो एक साधु कहे छे कि ना ये खोटी बात छे, कुंदकुंदाचार्य देव महाविदेहमां गया એ ખોટી વાત છે। હવે આચાર્યો પોતે કહે છે, 85 કાયના જયસેનાચાર્ય દેવની ટીકા છે, કુંદકુંદાચાર્ય દેવ ત્યાં ગયા હતા, અષ્ટપૌર્ણમાં છે અને દર્શન સારમાં છે, એ તો વહાં તો લિખા હુઆ હૈ ને, ગોમડગીરી નહીં, વો श्रवण बेलगोला में, पहाड़ के ऊपर खुदाई है वहाँ पर। आचार्य पोते कहे छे, देवसेनाचार्य कहे छे, अरे भगवान कुंदकुंदाचार्य देव, जो महाविधेयमां न गया होत तो अरे आवू मुनिपणू अमने केम थात। दर्शन सारनो पाठ छे, एने माने नहीं, अने दस दस हज़ार माणस में वखाण करे के कुंदकुंदाचार्य ईलाचार्य हता। दिगंबर लोको बिचारा एने पण भान न मळे, कुंदकुंदाचार्य देव ने ईलाचार्य केम कह्युं के त्यां गया था तो त्यां 500 धनुषनो देह छे अने आमनो देह फक्त चार हाथनो, एटले नाना आचार्य एम करीने कहेवामां आव्युं। आमनो चार हाथनुं नानुं शरीर अने भगवानो देह 500 धनुषनो छे અને બીજા કેટલાક મનુષ્યોના પણ 500 ધનુષના દેહ છે। હા, જન્મે ત્યારે પણ મોટો હોય ને, નાનું આટલું બાળક હોય એવું નહીં, ઉસ પ્રપોર્શન મેં ઉનકે બાળક ભી હોગે ના વહાં કે અભી, ક્યોંકિ 500 ધનુષ વાલે જો યુવા હોતે હૈ તો બાળક ભી ઉતને બડે હો ને, ગર્ભ મેં ભી ઇતને બડે હોગે, ક્યોંકિ મહિલાએ ભી ઉતની હાઇટ વાલી હોગી કે નહીં હોગી। तो उनके सामने कैसे इलायची जैसा दिखता होगा, जैसे चीटी वगैरह दिखेंगी हमारे सामने वैसा होगा, उससे भी छोटा। आहा, त्या 8 दिन रहा था। त्या शतकेवड़ी पासे केटलाक प्रश्नों पूछी ने समागमनो निर्धार कर्यो। भगवान ने सांभळ्या त्यांथी अहीं आव्या, उनको सुनकर यहाँ आए और बाद में उन्होंने इतने शास्त्रों की रचना की। अन्य भी शतकेवली होते हैं, गणधर तो है ही है, परंतु उनके अलावा अन्य भी जो मुनिराज है, हाँ, जो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, उनको श्रुत केवली कहते हैं। देखो ए हता तो समकी थी, साचा मुनि हता, पण छता एमने भगवान नी पासे जवानो विकल्प आयो, विरह लाग्यो, प्रभु तारा अमने अहीं विरह पड़या, हा हा, અમે ક્યાં પ્રભુ, તું ક્યાં રહ્યો, ભરતમાં તીર્થંકર રહ્યા ને, પણ તમે જ્યાં છો ત્યાં અમને વિરહ પડ્યા, આ હા હા, મોર પીંછી પડી ગઈ હતી, પણ એ તો મહાન કુંદકુંદાચાર્ય દેવ એટલે આ હા હા, એટલે ઉનકો ક્યાં કહેતે ગૃદ્ધ પીછા છે, હા, અન્ય હા, ગીત કે પંખ એને વો તો જો वो इकट्ठा करके पीछे बनाई थी, इसलिए गृद्ध पीछाचार्य कहते हैं। मराठी में हम गुरु कहते हैं, वो ग्रह कहते हैं हिंदी वाले, ग्रह गृद्ध। मोर की पीछे उनकी गिर गई थी, हाँ, तो इसलिए वो अन्य पंछियों का वो इकट्ठा करके उन्होंने, ऐसे पंछी तो मारते नहीं है, जो गिरे हुए हैं वो पंख इकट्ठे करते हैं, मोर पंख भी ऐसे ही इकट्ठे करते हैं। એ અહીં ગાથામાં અલિંગ ગ્રહણ કહે છે, એનો અર્થ કાઢે છે અમૃતચંદ્રાચાર્ય, આહા, કહે છે સંવત 1999ની વાત છે, સાંભળવા આવે માણસ બહુ આવે ને, 1999માં કેમ્પમાં વઢવાણમાં જોરાવરનગરમાં લીમડીમાં માણસ બહુ આવતું, એટલે સાંભળવા આવતા, એક લુગડું પહેરીને આવતા, સાંભળે પછી કહે એક છે, આહા હા, એ એક છે, એ તો સામાન્ય સ્વરૂપ છે, એ એક છે, સંસારમાં આખામાં વ્યાપક થાય માટે એક છે એમ એક નથી, સમજાનું કાંઈ, કોઈ ક્યાં માનતા એક હૈ અને સબકો મિલકર એક હૈ, એસા નહીં હૈ, એક કોઈ વેદાંતિ આવતા, હા હા, આત્મા એક હૈ ને ક્યાં હૈ, उसके भेद नहीं है, एक अखंड एक है, अभेद एक है थे ना, एक शुद्ध त्रिकाली ऐसा कहते, वो उसकी अपेक्षा से एक कहा, परंतु सब मिलकर एक ऐसा नहीं, उसका अर्थ ये कहना चाहते हैं। एक तो एनो गुण छे ने भाई, 47 शक्ति में आवे छे, एक पनु जे वस्तुनु स्वरूप छे ते एक एनो गुण छे, अने एक पन અનેક પણ એનો ગુણ છે, ઓ એકત્વ અનેકત્વ એસી શક્તિ હે ને, દોર ગુણ અને પર્યાય અનેક છે એ પણ એનો ગુણ છે, હા હા, સમજાનું કાંઈ। અહીંયા એમ કહે છે પાખંડીઓને પ્રસિદ્ધ સાધનરૂપ, પાખંડીઓનું સાધન એક વ્યાપક છે, वो क्या मानते हैं, एक सब में व्यापने वाला ऐसा आत्मा है, वो एक अखंड है, ये आकार वालो लोक व्याप्ति वालो नहीं, लोक में व्यापे वो नहीं, एवं अर्थनी प्राप्ति थे चे, ये उसमें से अर्थ निकलता है। अलिंग ग्रहण माती आवो भाव निकले चे। कुनकुनाचार्य देव एम कहवा मागे छे, हा हा ए पंदर बोल थया, विशेष केवा छे। अब नया प्रवचन जो है प्रवचन नंबर 181, उसको पढ़ते अभी हम। दस लक्षणी पर्व चौथो सत्य धर्म, आमा सत्य धर्म छे ये आमा शौच कहवाय छे। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, सरलता अने निर्लोभता शौच ने पची नाखे छे, एमा सत्य धर्म छे। बीजे ठिकाने शौच आवे छे, चार बोल आवे छे ने, क्या कहते हैं? दशलक्षण धर्म कौन कौन से है? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य और शौच। कहीं कहीं शौच और सत्य कहेंगे। यो क्रोध का अभाव रूप क्षमा, मान के अभाव रूप मार्दव, माया के अभाव रूप आर्जव। तो इसलिए यहाँ पर चौथे पॉइंट पर लोभ के अभाव रूप शौच धर्म लिया है, परंतु सत्य और बाद में शौच ऐसा है। यहाँ यही बोल कहते बीजे ठेकाने शौच आवे छे, ने कोई कोई तो शौच को पहले कहते और बाद में सत्य को लेते। पद्मनंदी पंचविंशति श्लोक 91, यानी ये पद्मनंदी पंचविंशति नाम का एक बड़ा ग्रंथ है, पद्मनंदी आचार्य ने लिखा हुआ है। कहते मुनियों ने सदा एवं सत्य वचन बोलवू जोइए। आम तो सत्य धर्म छे, पण वचन अने विकल्पनो व्यवहार करीने वात करी छे। क्या कहना चाहते हैं? ये सत्य धर्म है, किसको होता है? मुनियों के होता है कि नहीं होते हैं? मुनियों के होते हैं। तो जो मुनियों के है तो अरिहंत तो सिद्धों के हो गए कि नहीं हो गए? तो सिद्ध कहाँ सत्य बोलने जा रहे, तो उनको सत्य धर्म है कि नहीं? इसलिए यहाँ क्या कहा, वचन और विकल्प का व्यवहार करके समझाने में आता है। फिर से वाक्य पढ़ती हूँ, देखो। सत्य वस्तु जय परम सत्य थे, उसके ऊपर की लाइन पहले पढ़ती, देखो दूसरे पैराग्राफ की सेकंड लाइन। आम तो सत्य धर्म छे, पण वचन ने विकल्पनो व्यवहार करीने वात करी छे। अभी इसका अर्थ समझ में आया? सत्य धर्म समझाने के लिए वो सत्य बोलना वगैरह वगैरह उसकी बात की, या सत्य दूसरा क्या बताया, विकल्प भी जो सत्य है उस संबंधी सत्य विकल्प चलेंगे तो उसको कहाँ सत्य धर्म, ये कहने के लिए, क्योंकि समझाने के लिए। इसलिए क्या कहते, व्यवहार करीने बात करी छे। एक्चुअली सत्य क्या है? वस्तु सत्य है, और जैसा है वैसा हमको एक्सेप्ट करनी है। तो सत्य वस्तु जे परम सत्य छे, एनो आश्रय लईने जे स्थिरता थाय ए सत्य धर्म छे। ये जो दसे के दस धर्म है वो क्या है? वो वीतरागता है, क्योंकि धर्म क्या है? वीतरागता ही धर्म है। तो ये दस क्या है? उसके लक्षण है। वीतरागता कैसी है? तो क्रोध के अभाव रूप धर्म कहा उसको, सत्य धर्म। यानी एक्चुअली धर्म क्या है जो प्रकट हुआ है? वीतरागता। तो वीतरागता को कैसे समझाएंगे हम? कषाय के अभाव रूप वीतरागता कहेंगे। तो क्रोध के अभाव रूप है वो, क्रोध के अभाव रूप वीतरागता अलग है और मान के अभाव रूप वीतरागता अलग है, ऐसा नहीं है। वीतरागता एक ही है, और उसको हमने अलग अलग लक्षणों से उसी को बताने की कोशिश की। है ना, मैंने क्या बोला? सिद्धों को सत्य धर्म है कि नहीं ऐसा पूछा, वो बोलने को कहाँ जाते हैं? तो केवल सत्य बोलना ये सत्य धर्म है क्या, ये कहना चाहती हूँ। ख्याल में आई ना बात? क्योंकि कथन सत्य धर्म का वर्णन आता है तो क्या कहते, सत्य बोलना चाहिए, ऐसी बात करते हैं। हाँ, जो सत्य वस्तु है उसका स्वीकार करके उसी में स्थिर होना, तो वितरागता की उत्पत्ति होगी। तो हमें सत्य धर्म प्रकट हुआ ऐसा कहेंगे हम, और जितनी अधिक स्थिरता होगी, ये तो उत्तम शब्द लगाया है तो मुनियों की अपेक्षा से बात है, चौथे पांचवे वाले को होगा, परंतु उसकी अधिकता नहीं है, प्रचुरता नहीं है। अधिक स्थिरता किसके है? मुनियों के है। यहाँ लिखा क्या, देखो, सत्य वस्तु जय परम सत्य छे। वस्तु का जो स्वरूप है वो परम सत्य है। कौन सी वस्तु? अरे हर एक द्रव्य। उसका जो कुछ व्यवस्था है, उस द्रव्य का जो स्वरूप है, अभी यहाँ आश्रय लेने के लिए मैं स्वयं अपना द्रव्य, भगवान का भी नहीं, आश्रय लेना है उसमें स्थिर होना है वो अपना स्वयं का। तो कहते सत्य वस्तु जे परम सत्य छे एनो आश्रय लेने, परम शब्द क्यों, अपना है ना वो, तो परम शब्द जैसे पारिनामिक है सबके पास, परम पारिनामिक किसको कहें, जो मेरा अपना है उसको परम कहा, सर्वोत्कृष्ट है वो। तो कहते एनो आश्रय लेने जे स्थिरता था, उसके सन्मुखता होकर जो स्थिरता होती है ए सत्य धर्म छे। पण अहियाँ वचन व्यवहार वचन द्वारा असत्य न बोलू सत्य बोलू एवो व्यवहार नाख्यो, ये कथन है ना, समझाए कैसे, तो कथन के लिए सत्य बोलना चाहिए असत्य नहीं बोलना, इसी बातें करेंगे। जे पोताने ने परने पण हितकारी होय, मुनियों के लिए तो क्या है, वो कैसे वचन बोलते हैं, हित मित और प्रिय, हितकारी, कौन सा हितकारी, पैसे कैसे कमाना, कहाँ पैसे लगा लो, आत्मा का कल्याण करने वाले वो हितकारी बात। मित इन्हें लिमिटेड बोलेंगे, गप्पे नहीं लगाएंगे, शॉर्ट में बताएंगे, और प्रिय वचन बोलेंगे, यानी किसी का मन दुखे ऐसा नहीं बोलेंगे, ये कह रहे हैं। यहाँ लिखा देखिए, जे पोताने ने परने पण हितकारी होय, ये हित हो गया, एवं बोलू एम कहे छे, परिमित होय हित मित, मित ने परिमित शॉर्ट में एटले मर्यादित होय, अने अमृत समान मधुर होय, ये प्रिय, जो कदाच आउ सत्य वचन बोलवामां बाधा जणाय, प्रविधेयम नो अर्थ थाय छे ने, प्रविधेयम एनो अर्थ छे बाधा, एवी हालत में क्या कहते हैं, अब ऐसी सत्य वचन बोलने में कोई बाधा ख्याल में आवे, कैसी बाधा, जैसे आता है ना जंगल में मुनिराज बैठे हैं और वो कोई हिरण भागता है तो शिकारी उसके पीछे दौड़ता है तो पूछता है मुनियों को कहाँ गया, तो सत्य बोलने में तो बाधा है ना, हाँ, तो कहते एवी हालत में बुद्धि रूप धन ने धारण करना, अर्थात बुद्धि अर्थात ज्ञान ने ज्ञान में धारनार मुनिओए मौनूज अवलंबन लेवू, वो उनके लिए सत्य धर्म होगा। नहीं नहीं सत्य बोलना चाहिए करके वो तो वो बात नहीं, क्योंकि उनका अहिंसा का भंग हो जाएगा, अहिंसा जो महाव्रत है उसका भंग हो जाएगा। तो ज्ञान ने धारण करनार मुनिओए मौनूज अवलंबन लेवू एवो प्रसंग होय के सत्य न बोलाय अने विरोध उत्पन्न थाय एवं होय तो एने मौन रहेवू। बुद्धिधन पोतामां राखीने आनंदना सागर भगवान ने पोतामां राखीने मौन रहेवू, क्यारेक बहारमां सत्य बोलवामां विरोध लागे, ऐसी भी बात आती है ना, अभी समाज में है तो कोई सत्य बोलते हैं, आपने देखा होगा किसी व्यक्ति ने सत्य बोला मुनि के बाबत में तो पूरे बहुत उसका विरोध हुआ, हाँ कोर्ट कचहरी तक का प्रसंग आ गया। तो ऐसे कहते मौन रखना, अपनी सत्य बात अपने तक रखना। पद्मनंदी पंचविंशति श्लोक 91, सत्य वचन की स्थिति थताज व्रत थाय छे, साचू तो अंदर सत्य स्वरूप शुद्ध सम्य दर्शन होय, क्या कहा, ये सत्य में सत्य क्या है, अपना सत्य स्वरूप को पहचानना है, और ये केवल सत्य बोलने में ही उतने पूरी मर्यादा उसने ना की, तो सबसे पहले में पहले क्या करना चाहिए, तो समय दर्शन प्राप्त करना चाहिए। त्रिकाणी ज्ञायक भाव परम सत्यनो आश्रय होए त्यारे यथार्थ धर्म थाय, ये दसों के दस जो लक्षण है तब लागू पड़ेंगे, वो भी चौथे वाले के तो सामान्य से लागू पड़ेंगे, मुनियों के ऊपर उत्तम शब्द लगाएंगे। तो परम सत्यनो आश्रय होय त्यारे एने यथार्थ धर्म थाय, सत्य धर्म तो ए छे, हा हा, अहीं कहे छे के एनी स्थिति ए वचन बोलवा नहीं एवो व्यवहार लीधो, ये भी व्यवहार का कथन है। तेथी सज्जन पुरुष जगत पूज्य ते सत्य वचन ने आराधना करे छे, छे ने भारती सद्भीर जगत पूज्या च भारती, वीतरागनी जे सत्यवाणी छे एनु आराधन करे। भारती किसको कहा, वो सरस्वती कहते हैं, भारती कहते हैं, जिनवानी कहते हैं, वो जगत पूज्य है। पद्मनंदी पंचविंशति श्लोक 93। सत्य वचन बोलनार प्राणी समयानुसार परलोक में उत्तम राज्य शुभ विकल्प है ने, ए शुभ भाव है तो पुण्य प्रकृतिया बनती है। देव पर्याय अने संसार रूपी नदीना पारनी प्राप्ति, संसार की नदी पार करना ने मोक्ष प्राप्त करना, अर्थात मोक्ष पदरूप प्रमुख फल विकल्प है एना फल में स्वर्ग अने राज आदि मळे। क्या कहते हैं, ये जो सम्यक दर्शन हुआ, वितरागता की प्राप्ति हुई, तो अभी तो वितरागता पूर्ण तो वितराग हुआ नहीं है, तो चौथे वाले को अभी 3 कषाय चोकड़ी बाकी है, पांचवे वाले को 2 कषाय चोकड़ी, मुनिराज को भी 1 कषाय चोकड़ी बाकी है, तो उसके कारण वहाँ जितना राग है उतना बंद भी होगा, और जितने ऊपर ऊपर के गुणस्थान में है वहाँ तो शुभ प्रकृतियाँ अधिकतर बंधेगी, तो बंधेगी तो उसका फल भी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अच्छा होगा ना कि बुरा होगा, क्या होगा? वो तो पुण्य को भी भोगने के लिए उतना समय तो जाएगा कि नहीं जाएगा। स्वर्गों की आयु है तो सागरों की है, यहाँ तो 6ठे 7वें गुणस्थान में थे, अब मुनिराज मनुष्य पर्याय छोड़ गए, अभी कहाँ जाएंगे, देव में चले जाएंगे, और वहाँ तो सागरों तक वहाँ रहेंगे, कितना सुख मिलेगा। यहाँ 7वें का अनुभव हो रहा था, 6ठे 7वें का, और वहाँ 4थे में गए, है ना? देखते विकल्प छे ना फल में स्वर्ग ने राज आदि मळे, वो कुछ बाकी बहुत अच्छी बात थोड़ी है। क्या कहते हैं, अने बाकी अंदर जे स्वरूप ने सत्य धर्म दृष्टि ने ज्ञान ने शांति छे एनाथी एने मोक्ष मळे। जितना राग है उससे तो उसका फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, अभी शुभ राग की बात कर रहे, और जितनी वितरागता है वो तो मोक्ष के प्रति उसका आगे चलेगा उसका मार्ग। ए तो दूर रहो, कहे छे के मोक्ष पद तो दूर रहो, पण ते आज भवमां सत्यवादी जो है चंद्र समान निर्मल यश, देखो सत्य बोलने वाले की बात हो रही, उसको क्या क्या फल मिल रहा है, वो तो आगामी भव स्वर्ग का मिले वो तो बात छोड़ो, मोक्ष मिलेगा तब मिलेगा उसकी भी बात छोड़ो, कहते उसको यहाँ क्या मिलेगा इस भव में, तो कहते चंद्र समान निर्मल यश, सज्जन पुरुषों में प्रतिष्ठा अने साधुता प्राप्त करे छे, तेनु वर्णन कोण करी शके, पण ए परम सत्य वस्तुनी स्थिति छे। क्या कहते हैं, ये तो बाह्य सत्य बोलने की बात छोड़ दो, कहते ये परम सत्य तो वस्तु की जो स्थिति है, जो अपना स्वरूप है, वो परम सत्य है, तो कहते तेवु जाणीने बोलवु एम कहे छे, एने आत्मा के अनुभव पूर्वक बोलना उसको यहाँ ले लिया है, अने तेमा कोई दोष लागतो हो तो एने माटे बचाव न करवो एम कहे छे। सत्य बोलवु मार्ग तो आ छे ई कहेवुं छे, आहार आदि एने माटे लिए ए सदोष छे, ए तो मूल गुणनो भंग छे, तो कहे छे कदाचित एवुं होय तो पण सत्य कही देवुं, जे आहार मारा माटे आवे छे ए मने खपे नहीं, ए माटे ए मारे दोषरूप छे, सत्य वचन बोलवामां शंका न राखवी, अर्थात दुनियानो संदेह न राखो, सत्य छे ते सत्यने जाहिर करूं। हाँ ना, अपने अहिया प्रवचन सार मां अलिंग ग्रहण नो 16मो बोल, अभी ये तो पर्युषण दशलक्षण चल रहा था तो सत्य धर्म पर बोला उन्होंने, अपना जो विषय चल रहा था अलिंग ग्रहण का 16वा बोल, इंदौर वाला आया था, ये गया लगे छे, सवार में आया था ने, श्वेतांबर हसे अगस्त्य आया था, शत्रुंजय गया हसे, अभी वहाँ जाने आने वाले सोनगढ़ को वहाँ, हाँ देखते हैं, दर्शन करने के लिए आते थे, क्या बोलते हैं, क्या तत्व ज्ञान है क्या पता, महापुरुष होते तो ऐसे कितने ही लोग तो खास दर्शन करवा नमस्कार करेंगे तो उनको लगता है अपना कल्याण हो जाएगा, ये उनको उस पुरुष को देखने से कुछ नहीं होने वाला है, उन्होंने जो अद्भुत बातें बताई है अपने शास्त्रों में से बताई, अपने मन से तो कोई बातें नहीं बताई, जो मूल धारा चली आई है भगवान की वाणी है वो उन्होंने अत्यंत सरल करके हमको दे दी है। तो उसको सुनेंगे, शांति से बैठेंगे, समझेंगे। तो अभी जाते जाते यहाँ तक आए, चलो उनके दर्शन करेंगे, जैसे मंदिर में जाते भगवान के दर्शन करते, ऐसे इनका दर्शन करने से क्या मिलने वाला है। जब तक वो क्या कहते वो समझ में नहीं आती है बात, अंदर तक उसको हम सोचते नहीं उसके ऊपर, तो कुछ फायदा नहीं है। अरे शुभ भाव उसको, उससे लाभ क्या मिला उसको, ये ऐसा थोड़ा ही शुभ, यानी वो क्या कहते हैं उनकी वाणी तो मुख्य है ना वहाँ पर। केवल उस गुरु, कितने उनके आसपास ऐसे भी लोग थे, उनके भक्त ऐसे भी थे, 40-40 साल तक उनको सुनते थे, पर वो क्या कहते उसका भाव नहीं पकड़ में आता था, बस कुछ अच्छे है और उनके भक्त है, बस इतना। अभी आज के तारीख में भी ऐसे कितने हैं, मैं उनको मानने वाले कि ये हमारे गुरु है, ये सबसे अच्छे है, हम दूसरों को किसी को सुनने भी नहीं। अरे पर उन्होंने क्या बोला है वो तो सुनो ना, दूसरों को मत सुनो मगर उन्होंने क्या बोला है उसको अच्छी तरह से सुनो, वो नहीं बात होती है। हाँ पर पक्ष अगर उनकी बात समझेगी तो पक्षपात रहेगा नहीं, ये पक्ष की बुद्धि नहीं छूट जाएगी वो तो। देखो हाँ, देखो अलिंग ग्रहण नो सोलमो बोल, जेने एटले भगवान आत्मा ने, लिंगोनु एटले के स्त्री पुरुष ने नपुसक वेदोनु ग्रहण नथी एटले के भगवान आनंद ने ज्ञायक स्वरूप छे। देखो ये भगवान आत्मा ने जीव द्रव्य की बात है ना, एवो जे दृष्टि नो अनुभव थयो, इन्हें आत्मा का अनुभव हुआ, एने स्त्री पुरुष नपुसकना लिंगोनु ग्रहण नथी, यानी वो अपने को स्त्री पुरुष या नपुसक रूप अनुभव कर रहा है क्या, ज्ञान आनंद रूप अनुभव कर रहा है, ये बात बता रहे। नपुसक हो ई समकित पामी शके छे, नारकी मां बधा नपुसक छे छता समकित छे, देव मां स्त्री ने पुरुष बेज होय, यानी वहां दो ही वेद होते हैं देवों में, भोग भूमि में ही पांचवा तीर्यंच भी होते हैं ना नपुसक वेदी, मनुष्य भी हो गए, अभी मनुष्य है तो नवे गुण स्थान तक जाएंगे, द्रव्य से पुरुष है और भाव से नपुसक है जाएंगे। अरे अपगत वेद होकर जाएंगे ना, क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे, केवली भी हो गए, तीर्थंकर नहीं होते, मोक्ष जाते हैं, यानी द्रव्य से जो पुरुष हाँ हाँ श्रीवेदी कहेंगे उसको, भाव से श्रीवेदी, द्रव्य से पुरुष जो है मुनि होकर, पर भाव से जो स्त्री वेद है, जन्म से जो वेद है वही वेद रहता है, यानी ऐसे उनके कुछ क्रिया में ऐसी खोट खोट है ऐसी कुछ बात नहीं है, पर वो कैसे क्या कहेंगे उनको, स्त्रीवेदी कहेंगे, भाव से स्त्रीवेदी कहेंगे, ऐसे जो मोक्ष जा सकते उसी पर्याय में, क्योंकि द्रव्य से पुरुष है वो, नपुसक वेदी का भी ऐसा ही है, परंतु वो उस भाव में तीर्थंकर नहीं हो गए, तीर्थंकर प्रकृति बांधेंगे जरूर, पर वहाँ से एक स्वर्ग का या नरक का जो कुछ यथा है भोग करके फिर वापस मनुष्य होकर फिर मोक्ष जाएंगे, पुरुष होकर ही जाएंगे, तीर्थंकर बनने वाले भाव से भी और द्रव्य से भी पुरुष ही होंगे, सामान्य जो केवली है उसमें से कोई स्त्री वेदी भी हो सकते है, भाव से ही बात है, नपुसक वेदी भी हो सकते है और पुरुष वेदी भी हो सकते, हाँ भाव की अपेक्षा से नपुसक या स्त्री होते हैं। हाँ द्रव्य श्रीवेदी पांचवे गुण स्थान तक है, तिर्यंच नहीं भी है मनुष्य नहीं भी है, मनुष्य नहीं कहेंगे उसको, द्रव्य से है ना तो उसको द्रव्य स्त्री कहेंगे, मनुष्य नहीं कहेंगे तो भाव श्रीवेदी होते हैं, मनुष्य नहीं कहेंगे तो 14 गुण स्थान है, मनुष्य नहीं यानी मनुष्य का, देखो देखो एक तो ये मार्गणा के भेद होते हैं, मार्गणा में मनुष्य, ये मनुष्य गति मार्गणा जो है गति मार्गणा, उसके चार भेद है मनुष्य गति देवगति। अब मनुष्यों के अगर हम भेद करेंगे तो कहाँ कहेंगे, एक तो सामान्य से मनुष्य कहेंगे, दूसरा टाइप कौन सा है, पर्याप्त मनुष्य जो कहें, और एक भेद है कि मनुष्य नहीं, और एक लब्धि अपर्याप्त मनुष्य। तो मनुष्य नहीं किसको कहेंगे, जो भाव से स्त्री मनुष्य है। भाव से स्त्री तो देव में भी होती है, द्रव्य से और भाव से, और त्रियंश में भी होती है। यहाँ मनुष्यों का भेद है, कौन सा, स्त्री वेद वाला भाव से। वो द्रव्य से कौन सी है उसकी चर्चा नहीं है, भाव से स्त्री वेद वाला है उसको मनुष्य नहीं कहेंगे। परंतु वो गति मार्गणा का भेद है ना, तो उसके गुणस्थान कितने हो गए, 14। वहाँ नौ नहीं कहेंगे, आलाप में आता है। हाँ पहले किया था, याद है ना, थोड़ा थोड़ा। मनुष्यों का भेद है मनुष्य नहीं, जो भाव से स्त्री वेद वाले है उनके गुणस्थान कितने होते थे, 14। परंतु जब हम स्त्री वेदी कहेंगे, वेद मार्गणा की अपेक्षा जब हम स्त्री वेदी कहेंगे, तो वेदी यानी वेद वाले कब तक कहेंगे, जब तक उसका उदय है। तो स्त्री वेद का उदय कब तक है, तो 9वें गुणस्थान तक। यानी जीव वही का वही है, उसको अगर हम उसको मनुष्य नहीं कहेंगे तो 14 गुणस्थान हो गए। अगर उसको हम स्त्री वेदी कहते हैं तो गुणस्थान उसके 9 हो गए। बाद में उसी जीव को हम अपगत वेदी कहेंगे, यानी वेद का उदय मिट गया है। भाव से 14, यानी उस भाव में वो मोक्ष जा सकता है। इसका अर्थ क्या है, 14 गुणस्थान होते हैं, उसका अर्थ क्या है, 14 गुणस्थान के बाद मोक्ष है उनको। 9 ग्रेवेग नहीं जा सकते, नहीं। देखो जब हम उस जीव को क्या कहेंगे, मनुष्य नहीं कहेंगे तो 14 गुणस्थान, उसी जीव को हम स्त्री वेदी कहेंगे 9वां गुणस्थान। क्यों, बाद में उसी जीव को क्या कहेंगे, है मनुष्य नहीं, उसको अपगत वेदी कहेंगे, क्योंकि वेद का उदय मिट गया है। ये कर्णान योग में कथन के जो भेद होते हैं ना, उसको नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं समझता है।
नहीं, इसके लिए बेसिक पहले समझाइए।
हाँ हाँ, तीर्यंचनी के 5वां गुणस्थान। हाँ, क्योंकि तीर्यंच पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो, 5वें गुणस्थान तक होते हैं उनके।
अभी मुझे थोड़ा सा बोलना है।
हाँ,
मैं ये कह रहा था कि मनुष्य गति में और तीर्यंच गति में द्रव्य से पुरुष, तो उसको अपोजिट जो उसका सेक्स है उसके प्रति जो उसका आकर्षण है उसको कहेंगे कि वह स्त्री वेदी है, पुरुष वेदी है। पुरुष वेदी यानी पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण, और जो स्त्री वेदी कहेंगे तो उसको
पुरुष को पुरुष के प्रति,
पुरुष यानी स्त्री को पुरुष के प्रति है उसको कहेंगे वो स्त्री वेदी। ये द्रव्य से नहीं बात कर रहे, भाव से कर रहे। अब ऐसा हो सकता है कि द्रव्य से पुरुष हो और उसको पुरुष के प्रति आकर्षण होता हो, तो उसको कहेंगे द्रव्य से पुरुष और भाव से स्त्री वेदी। ऐसा जीव मोक्ष जा सकता है, यानी 9वें गुणस्थान तक उसका स्त्री वेद का उदय है समझ लो। बाद में अपने जो बताया अवेदी अथवा अपगत वेदी, वो हो जाके मोक्ष जाएगा। लेकिन ऐसा जो स्त्री वेदी है, नपुंसक वेदी है, वो पुरुष तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधेगा।
नहीं नहीं, बांधेगा,
मनुष्य पर्याय में
बांधेगा, उसका उदय नहीं होगा।
हाँ,
वो तीर्थंकर नहीं होगा,
तीर्थंकर उसी पर्याय में नहीं होगा। अब यहाँ पर ये बात जब ख्याल में आते हैं तो अपने को थोड़ा सा टेंशन खत्म होता है कि दुनिया में हम देखते हैं कि कोई पुरुष है उसको पुरुष के प्रति आकर्षण है, कोई स्त्री को स्त्री के प्रति आकर्षण है, तो वो भाव उसका अलग है। जनरली नॉर्मली क्या होता है कि जो पुरुष होगा उसको स्त्री के प्रति आकर्षण है और स्त्री होगी उसको पुरुष के प्रति आकर्षण है। लेकिन उसमें क्या है, भाव से पुरुष है, अपना द्रव्य से पुरुष है, उसको स्त्री के प्रति और पुरुष के प्रति दोनों के प्रति आकर्षण है, उसको नपुंसक विधि कहेंगे। ये जब बात हमारे ख्याल में आती है तो हम तो ऐसा मानने लगते हैं कि भाई अरे क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं। आपने एक बात बताई कि जिसको जन्म से जो वेद का उदय है वही वेद का उदय टिल हिज डेथ रहेगा,
भाववेद की,
भाव भाव का वेद। ये बात ख्याल में रखने से, अभी इन्होंने जो मार्गना की बात करी वो मार्गना आपको कितने कहाँ तक समझ में है, क्योंकि मार्गना दो अपेक्षा, एक वेद मार्गना की अपेक्षा और एक
गति मार्गना,
कौन सी गति मार्गना के, तो उसमें समझ लेना कि भाई जो पुरुष है लेकिन स्त्री वेदी है या नपुंसक वेदी है उसके 90 गुण स्थान तक की बात चलेगी। अब वेद मार्गना में कहते हैं कि वह जीव 14 मतलब ये हो के
ये पैराग्राफ हम कल लेंगे फिर से दोबारा, ये 126 पेज पर लास्ट पैराग्राफ से कल पढ़ेंगे, अभी यहीं रुकेंगे। हाँ सोलवा बोल वहाँ से लेते हैं, और भी है, हाँ 20 बोले ना। चावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। आशा भाई।